एकात्र जान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया के कुछ सबसे दिलचस्प विचारों और किताबों की गहराई में उतरते हैं। आज हम निवेश की दुनिया की एक, कह सकते, क्लासिक किताब की बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
जी हाँ, आज बात होगी फिलिप ए फिशर की मशहूर किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स।
देखिए, नाम में कॉमन स्टॉक जरूर है, पर असल जोर है उन अनकॉमन प्रॉफिट्स पर, मतलब असाधारण मुनाफों पर।
और ये आज के जमाने में मुझे लगता है शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया
है ना?
बिल्कुल।
मतलब चारों तरफ जल्दी पैसा बनाने की बातें, बाजार में इतनी उठापटक, ऐसे माहौल में फिशर का जो तरीका है लंबा सोचना, बिजनेस को समझना, वो एक अलग नजरिया देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक निवेशक का असली रोल क्या है, सिर्फ शेयर खरीदना बेचना या किसी बिजनेस में हिस्सेदार बनना।
बिल्कुल सही कहा। ये किताब इसी बुनियादी सवाल से शुरू होती है कि भाई, बाजार की रोज की टेंशन से ऊपर उठकर लगातार अच्छा रिटर्न कैसे कमाया जाए, और सिर्फ रिटर्न नहीं, सचमुच की वेल्थ कैसे बनाई जाए। फिशर हमने उस शॉर्ट टर्म सोच से, उस सट्टेबाजी वाले माइंडसेट से दूर ले जाते हैं एक ज्यादा अनुशासित बिजनेस पर आधारित सोच की तरफ। ये निवेशक की भूमिका को ही एक तरह से बदल देता है।
तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं इस सोच के पीछे जो शख्स हैं, फिलिप फिशर, उन्हें थोड़ा जानते हैं। ये कोई किताबी प्रोफेसर नहीं थे, ये तो 20वीं सदी के सबसे माने हुए सफल प्रैक्टिकल निवेशकों में से एक थे।
जी, और उन्हें ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है, मतलब वो कंपनियां ढूंढना जो लगातार बढ़ सकें।
सोचिए जरा, उन्होंने 1931 में, मतलब ग्रेट डिप्रेशन के ठीक बाद, अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की, फिशर एंड कंपनी,
और 60 साल से ज्यादा उसे चलाया। कितना तजुर्बा रहा होगा, न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे बाजार के। इसी अनुभव से उनके नजरिए में एक ठहराव, एक गहराई आई जो आजकल कम ही मिलती है।
और उनकी सबसे खास बात क्या थी, वो सिर्फ नंबर नहीं देखते थे।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
उनका जोर था गुणात्मक विश्लेषण पर, क्वालिटी पर, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, रिसर्च पर कितना ध्यान है, इंडस्ट्री में भविष्य कैसा दिखता है।
ये उनके जमाने के दूसरे बड़े नाम बेंजामिन ग्राहम से काफी अलग था। ग्राहम साहब तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरु थे, वो ज्यादातर आंकड़ों पर, क्वांटिटेटिव चीजों पर फोकस करते थे।
फिशर की सोच अलग थी, क्वालिटी पहले।
और फिशर वैसे थोड़े एकांत प्रिय माने जाते थे, अपने क्लाइंट्स चुनने में भी बड़े पर्टिकुलर थे, लेकिन उनकी किताबों ने उनके विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। और उनका असर देखिए, वॉरेन बफे जैसा दिग्गज निवेशक कहता है कि वो 85% ग्राहम और 15% फिशर है।
हाँ, वो 15% फिशर वाला हिस्सा ही शायद बफे को सिर्फ सस्ती कंपनियां खरीदने से आगे ले गया, बेहतरीन कंपनियों में अच्छी कीमत पर निवेश करने की तरफ।
बिल्कुल, क्वालिटी वाली कंपनी।
और देखिए, सिर्फ बातें नहीं, उन्होंने करके दिखाया। मोटोरोला का शेयर 1955 में खरीदा
और दशकों तक रखा। ये दिखाता है उनके मेथड की ताकत। सही कंपनी पहचानो और फिर टिके रहो, धैर्य रखो।
तो अब आते हैं इस किताब पर, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। आखिर ये किताब सिखाती क्या है?
देखिए, इसे आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग के दर्शन और प्रैक्टिस दोनों की एक गाइडबुक मान सकती हैं। इसका मकसद है एक सीरियस निवेशक को वो समझ, वो टूल्स देना, जिससे वो ऐसी कंपनियां ढूंढ सके जो सालों साल असाधारण रूप से बढ़ें।
हाँ, और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये उन लोगों के लिए है जो होमवर्क करने को तैयार हैं, मेहनत करने को, जो किसी कंपनी को सिर्फ एक टिकर सिंबल जो शेयर प्राइस की तरह नहीं देखते, बल्कि एक चलते फिरते जीते जागते बिजनेस की तरह समझना चाहते हैं।
सही कहा, ये निवेशक का रोल बदल देती है। आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, आप बिजनेस एनालिस्ट और पार्टनर बन जाते हैं।
किताब की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। फिशर पहले तो उस समय की कुछ आम धारणाओं को तोड़ते हैं।
हाँ, जैसे कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, मतलब दर्जनों शेयरों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देना, वो इसके आलोचक थे।
और मार्केट टाइमिंग का जो जुनून होता है, बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे गिरेगा, इसका अंदाजा लगाना, फिशर इस पर भी सवाल उठाते हैं।
फिर आता है किताब का सबसे अहम हिस्सा, फिशर के मशहूर 15 पॉइंट्स।
हाँ, ये तो बहुत फेमस है।
ये असल में 15 सवालों का एक फ्रेमवर्क है, एक चेकलिस्ट कह लीजिए, जो किसी कंपनी के बिजनेस, उसके मैनेजमेंट, उसके लोगों और उसकी वित्तीय सेहत, इन सबको परखने में मदद करती है।
और ये सवाल ऐसे हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचें, है ना?
बिल्कुल, मालिक की तरह। लेकिन सवाल ये है कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे कहाँ? क्या सिर्फ कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से?
यहीं पर फिशर का वो अनोखा तरीका आता है।
हाँ, उनका स्कटल बट मेथड, जिसे हम शायद अंदर की खबर निकालना या ग्रेप वाइन सुनना कह सकते हैं।
मतलब
सिर्फ मैनेजमेंट की बातें मत सुनो, असली कहानी जाननी है तो कंपनी के कॉम्पिटिटर से बात करो, ग्राहकों से पूछो, सप्लायर्स से मिलो, यहाँ तक कि पुराने कर्मचारियों से भी बात करो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से राय लो।
अच्छा, मतलब जमीनी हकीकत पता करो।
बिल्कुल, जमीनी हकीकत।
और फिर किताब प्रैक्टिकल सलाह भी देती है, जैसे खरीदना कब है। फिशर के लिए सही कंपनी मिलना ज्यादा जरूरी था, सही कीमत से भी।
हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बेचना कब है, और बेचने के लिए तो उन्होंने बड़े सख्त नियम दिए थे, सिर्फ 3 वजह बताई।
तो ये सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये निवेश का एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है।
चलिए अब किताब के स्ट्रक्चर को थोड़ा और खोलते हैं। ये 3 हिस्सों में है, अलग अलग टाइम पर लिखे गए, पर सोच एक ही है, फिशर का कोर फलसफा।
पहला भाग 1958, ये शायद सबसे ज्यादा पढ़ा और कोट किया जाने वाला हिस्सा है।
जी हाँ, अध्याय 1 और 2 में वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की नींव रखते हैं। वो बताते हैं कि असली वेल्थ उन कंपनियों को ढूंढकर और उनमें लंबे समय तक टिके रहकर बनती है जो अपनी कमाई लगातार बढ़ा सकें। और फिर आते हैं वो 15 पॉइंट्स, इनको हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं।
पहला हिस्सा, बिजनेस कैसा है।
हाँ, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में दम है कि वो सालों तक बिकते रहें, बढ़ते रहें? क्या मैनेजमेंट नई चीजें लाने, R&D करने को लेकर सीरियस है? सेल्स टीम कैसी है? प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है? और क्या ये टिकाऊ लगता है? ये तो बिजनेस के फंडामेंटल्स हो गए।
बिल्कुल।
फिर दूसरा हिस्सा है लोग और मैनेजमेंट।
ये बहुत जरूरी है।
क्या मैनेजमेंट में गहराई है? मतलब ऐसा तो नहीं कि सब कुछ एक ही स्टार CEO पर टिका हो। कर्मचारियों के साथ रिश्ते कैसे हैं? क्या टॉप मैनेजमेंट ईमानदार है, नीयत साफ है? ये सॉफ्ट फैक्टर्स अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर फिशर के लिए ये बहुत मायने रखते थे। और हाँ, क्या कंपनी को अपने कॉस्ट की सही समझ है?
और तीसरा हिस्सा,
वो है वित्तीय और रणनीतिक पहलू।
जैसे
क्या कंपनी का अपनी इंडस्ट्री में कोई खास मुकाम है, कोई कंपेटिटिव एडवांटेज? क्या मैनेजमेंट लंबी अवधि का सोचता है या सिर्फ अगली तिमाही के नतीजों के पीछे भागता है? क्या आगे बढ़ने के लिए कंपनी को बार बार नए शेयर जारी करके पैसा जुटाना पड़ेगा जिससे पुराने शेयर होल्डर्स का हिस्सा कम होता जाए? और क्या मैनेजमेंट मुश्किल वक्त में भी निवेशकों से सच बोलता है, पूरी पारदर्शिता रखता है?
और वो आखिरी पॉइंट 15वां।
हाँ, मैनेजमेंट की अखंडता, इंटेग्रिटी, शायद सबसे महत्वपूर्ण।
अध्याय 3 और 4 बताते हैं कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। फिशर साफ कहते हैं कि ये कोई नंबर गेम नहीं है, कोई स्कोरिंग सिस्टम नहीं।
हाँ, ये टिक बॉक्स करने जैसा नहीं है, ये गहराई से सोचने का एक ढांचा है।
और खरीदने के टाइमिंग को लेकर वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा चिंता मत करो, अगर कोई बेहतरीन कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर मिल रही है तो खरीद लो।
बिल्कुल, अक्सर अच्छा मौका तब मिलता है जब कोई अच्छी कंपनी किसी टेम्परेरी मुश्किल में हो या जब पूरे बाजार में घबराहट का माहौल हो। अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग कह सकते हैं।
अध्याय 5 बेचने के बारे में है, और ये बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि ज्यादातर लोग बेचने में ही गलती करते हैं।
हाँ, ये बात तो है।
फिशर का मानना था कि भाई सिर्फ इसलिए मत बेचो कि शेयर बहुत चढ़ गया है या बाजार महंगा लग रहा है, ये गलतियां हैं। उनके मुताबिक बेचने के सिर्फ 3 जायज कारण हैं।
कौन कौन से?
पहला, आपने खरीदने में ही कोई गलती कर दी थी, मतलब कंपनी को समझने में चूक हो गई।
ठीक है।
दूसरा, कंपनी अब उन 15 पैमानों पर खरी नहीं उतरती। मान लीजिए मैनेजमेंट बदल गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया या प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, मतलब बिजनेस के फंडामेंटल्स बदल गए।
और तीसरा
कारण है कि आपको कोई बहुत ही ज्यादा बेहतर निवेश का मौका मिल गया है, और यहाँ बहुत ज्यादा बेहतर पर जोर है, ये क्राइटेरिया बहुत हाई है।
अच्छा, मतलब छोटी मोटी बढ़त के लिए स्विच नहीं करना है।
बिल्कुल नहीं। अध्याय 6 और 7 में वो डिविडेंड को लेकर जो एक जुनून सा होता है निवेशकों में, उस पर सवाल उठाते हैं।
हाँ, उनका तर्क था कि एक ग्रोथ कंपनी के लिए तो बेहतर है कि वो अपना मुनाफा वापस बिजनेस में ही लगाए, R&D करे, विस्तार करे। ये शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है बजाय डिविडेंड बांटने के।
और कुछ क्या ना करें, डोंट्स भी बताते हैं, जैसे प्रमोशनल, मतलब सिर्फ हवा हवाई बातें करने वाली कंपनियों से दूर रहें।
और एक बहुत जरूरी चेतावनी, अति विविधता, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें।
हाँ, वो उसे मजाक में डिवर्सिफिकेशन कहते थे।
बिल्कुल। उनका मानना था कि 50 औसत कंपनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से कहीं बेहतर है क्या 5-10 बेहतरीन कंपनियों को गहराई से जानें और उनमें ठीक ठाक निवेश करें। ये ज्यादा सुरक्षित है, कम जोखिम भरा है।
ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, पर उनकी लॉजिक दमदार है।
फिर आता है दूसरा भाग, 1975। ये कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी निवेश की परिभाषा को ही बदल देता है।
कैसे?
फिशर कहते हैं, असली कंजर्वेटिव वो नहीं जो कम वॉलेटिलिटी वाले शेयर खरीदें। असली कंजर्वेटिव वो है जो अपनी पूंजी के स्थायी नुकसान से बचे, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल से।
अच्छा, और इसके लिए क्या जरूरी है?
4 चीजें, इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजिशन, मजबूत R&D, बेहतरीन लोग और मैनेजमेंट, और तगड़ा फाइनेंशियल कंट्रोल। ये चीजें हैं तो आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित है।
और तीसरा भाग, 1980।
मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की भी बात करते हैं, जैसे भीड़ के पीछे भागने का दबाव, डर और लालच का असर। ये हिस्सा निवेशक को सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बल्कि एक मैच्योर इंसान बनने की भी सीख देता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश निकालें तो वो क्या होंगे? मेरे लिए तो पहला और सबसे बड़ा टेक अवे है गुणात्मक विश्लेषण की ताकत, खासकर वो स्कटलबट वाली बात।
हाँ, वो तो है ही।
सिर्फ नंबर देखना काफी नहीं है, कंपनी के पूरे इकोसिस्टम को समझना, ग्राहक, सप्लायर, प्रतियोगी, पुराने कर्मचारी, उनसे बात करना, असली इंसाइट वहीं से मिलती है। ये आपको एक डिटेक्टिव जैसा बना देता है।
दूसरा बड़ा आइडिया है सिर्फ बेहतरीन ग्रोथ कंपनियों पर फोकस। एवरेज या ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा। फिशर का मानना था कि बाजार का ज्यादातर रिटर्न कुछ गिनी चुनी असाधारण कंपनियां ही देती हैं। तो लक्ष्य होना चाहिए उन कंपनियों को पहचानना जिनमें टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। वो 15 पॉइंट्स इसी के लिए तो है।
तीसरा, और ये मैं फिर कहूंगा, मैनेजमेंट की क्वालिटी सबसे ऊपर है।
हाँ, ये तो फिशर बार बार कहते हैं।
कंपनी कागज पर कितनी भी अच्छी हो, अगर चलाने वाले लोग काबिल, दूरदर्शी और सबसे जरूरी ईमानदार नहीं है तो सब बेकार है। फिशर ने मैनेजमेंट को परखने पर बहुत जोर दिया, उनकी क्षमता, उनकी गहराई और उनकी नीयत। ये निवेशक और मैनेजमेंट के बीच एक तरह की पार्टनरशिप है।
चौथा है लंबी अवधि का नजरिया। वो फिशर की लाइन याद है ना, अगर खरीदते समय काम सही किया है तो बेचने का समय है लगभग कभी नहीं।
हाँ, सुनने में एक्सट्रीम लगता है, पर ये कंपाउंडिंग की ताकत और धैर्य के महत्व को दिखाता है। बाजार के शॉर्ट टर्म शोर को इग्नोर करना, बिजनेस पर फोकस रखना।
पांचवां, वो अति विविधता, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने की सलाह।
हाँ, डाइवर्सिफिकेशन
बिल्कुल। ये आज भी उतनी ही सही है। बहुत सारे शेयरों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना शायद आपको सुरक्षित महसूस कराए, पर फिशर कहते थे असली सुरक्षा गहरी समझ से आती है। कुछ कंपनियों को अच्छी तरह जानकर उनमें विश्वास के साथ निवेश करना दर्जनों कंपनियों में बिना समझे पैसा लगाने से ज्यादा सुरक्षित है। बात वही है, नो वॉट यू ओन, आप क्या खरीद रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए।
और छठा पॉइंट,
बेचने में अनुशासन और अनिच्छा। बेचने का फैसला डर या लालच में आकर नहीं बल्कि बिजनेस में आए किसी फंडामेंटल स्थायी बदलाव के आधार पर लेना।
इससे आप उस आम गलती से बचते हैं जहां लोग अच्छी कंपनियों को जरा सा प्रॉफिट लेकर या थोड़ी घबराहट में बेच देते हैं
और फिर लंबे समय के बड़े मुनाफे से हाथ धो बैठते हैं।
इस किताब में कुछ कोट्स तो ऐसे हैं जो दिमाग में छप जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे ये वाला मुझे बहुत सटीक लगता है, शेयर बाजार ऐसे लोगों से भरा है जो हर चीज की कीमत प्राइस जानते हैं लेकिन किसी चीज का मूल्य वैल्यू नहीं।
क्या बात है, कितनी सीधी और गहरी बात है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पूरा फर्क इसी एक लाइन में आ गया, कीमत वो जो आप देते हैं, मूल्य वो जो आपको मिलता है।
और ये तो जैसे उनका मंत्र ही है, अगर शेयर खरीदते समय काम सही ढंग से किया गया है तो उसे बेचने का समय है लगभग कभी नहीं।
ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं लगती, ये एक विश्वास है अच्छी कंपनियों में और कंपाउंडिंग की ताकत में।
एक और जो उनके फोकस को जाहिर करता है, मुझे बहुत सारे अच्छे निवेश नहीं चाहिए, मुझे कुछ बेहतरीन आउटस्टैंडिंग चाहिए।
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कम हो पर बेस्ट हो।
हाँ, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा वही लगाओ जहाँ सबसे ज्यादा कन्विक्शन हो।
और वो स्कटल बट वाली बात के निचोड़, उसे कैसे कहेंगे?
शायद कुछ इस तरह, सिर्फ कंपनी जो कहती है उस पे मत जाओ, बाहर निकलो, लोगों से बात करो, उसके ग्राहक, उसके प्रतियोगी, उसके सप्लायर, उसके पुराने कर्मचारी। असली कहानी अक्सर वहीं छुपी होती है।
मतलब जमीनी हकीकत जानो, सिर्फ मैनेजमेंट की बातों पर यकीन मत करो, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा जिज्ञासु बनो।
और धैर्य पर वो क्लासिक कथन, शेयर बाजार सक्रिय लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए बना है।
मतलब जो टिके रहते हैं शांति से अच्छी कंपनियों के साथ, बाजार आखिरकार उन्हें ही इनाम देता है, ना कि उन्हें जो हर रोज खरीदते बेचते रहते हैं।
धैर्य यहाँ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन जाता है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब बातों को हम अपनी जिंदगी में अपने निवेश में कैसे उतारें? कोई आम निवेशक क्या करे?
देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि फिशर के 15 पॉइंट से प्रेरणा लें। जरूरी नहीं कि आप उन्हीं 15 को फॉलो करें, पर अपनी एक चेकलिस्ट जरूर बनाएं। कुछ पैमाने तय करें जिनके आधार पर आप कंपनियों को परखेंगे। इससे फैसलों में अनुशासन आएगा।
और वो स्कटलबट वाला काम?
हाँ, स्कटलबट। आज के डिजिटल युग में तो ये और भी आसान हो गया है। ऑनलाइन रिव्यूज देखिए, इंडस्ट्री फोरम्स पर चर्चा पढ़िए, लिंक्डइन पर लोगों से जुड़िए, ग्लासडोर पर कर्मचारियों के रिव्यूज देखिए।
सही कहा, जानकारी के स्रोत बहुत हैं।
बस सही सवाल पूछने की और जानकारी को वेरीफाई करने की जरूरत है। और हाँ, बेचने के वो 3 कारण हमेशा दिमाग में रखें। इमोशनल होकर नहीं बेचना है।
बिल्कुल, और ये बातें सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं है, क्यों बिजनेस लीडर्स और उद्यमी तो इसे सीख सकते हैं।
बिल्कुल सीख सकते हैं। वो 15 पॉइंट सोचिए, क्या वो एक बेहतरीन लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बनाने का ब्लूप्रिंट नहीं है?
है तो
कोई भी लीडर खुद से पूछ सकता है, क्या हम R&D पर काफी ध्यान दे रहे हैं? क्या हमारे कर्मचारी खुश है? क्या हम अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति ट्रांसपेरेंट है? इन सवालों के जवाब कंपनी को बेहतर बना सकते हैं।
और फिशर का जो लंबी अवधि पर जोर है,
हाँ, वो आज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के प्रेशर का एक बढ़िया तोड़ है। ये लीडर्स को हिम्मत देता है कि वो ऐसे फैसले लें जो शायद आज थोड़े मुश्किल लगे, पर लंबे समय में कंपनी के लिए अच्छे हों। शॉर्ट टर्म से आगे देखने की सोच।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो क्या कहेंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि सफल निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
हाँ, ये बात सही है।
यह है बेहतरीन बिजनेस को पहचानना, उनके मैनेजमेंट पर भरोसा करना और फिर धैर्य के साथ लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहना, एक पार्टनर की तरह।
ये नजरिया बदलने की बात है, ट्रेडर से ओनर बनने की। अपनी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। मैं 3 बातें कहूंगी जो मुझे लगता है हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, गुणवत्ता सबसे जरूरी है। बिजनेस की क्वालिटी और मैनेजमेंट की ईमानदारी, यही लंबे समय में असली वेल्थ क्रिएट करती है। कीमत भी जरूरी है, पर क्वालिटी पहले।
दूसरा,
ज्ञान ही आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। असली रिस्क बाजार के उतार चढ़ाव में नहीं है, असली रिस्क ये ना जानने में है कि आपने पैसा लगाया कहाँ है। जिन कंपनियों को आप गहराई से समझते हैं, उनमें निवेश करना कम जोखिम भरा है, भले ही आपका पोर्टफोलियो कंसेंट्रेटेड हो।
और तीसरा,
धैर्य एक सुपर पावर है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, शांति से बैठने की क्षमता, एक अच्छी कंपनी को अपना काम करने देना और दशकों तक उसकी ग्रोथ का फायदा उठाना, ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे शक्तिशाली निवेश स्किल है।
और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। आज जब इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड है, हर तरफ डेटा, न्यूज, एक्सपर्ट्स की राय, क्या फिशर की वो स्कटलबट वाली कला, मतलब शोर से परे जाकर असली लोगों से बात करके जमीनी हकीकत जानने की कोशिश, क्या वो आज और भी ज्यादा कीमती नहीं हो गई है?
सोचने वाली बात है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि असली अल्फा, असली बढ़त अब डेटा के अंबार में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने और सही लोगों से बात करने में छिपी है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।